आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत की मशरकी मुल्कों से रابطے बढ़ाने की पॉलिसी ने आसियान के साथ ताल्लुकात को नई तवानाई रफ्तार और नई समत फराहम की है। उन्होंने लाओ पीटीआर के शहर वियंतियान में आसियान लीडरों के साथ बाहमी मीटिंगें भी की। मरकज ने गैर कानूनी कार्रवाईयों की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत हिजबुत तहरीर और उसकी जैली तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमें करार दिया है। मारूफ सनतकार रतन टाटा की आखिरी रसूमात मुंबई के वर्ली शमशान में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। जनूबी कोरिया के मुसन्निफा हाकोंग को अदब का नोबेल इनाम दिया गया है। दुर्गा पूजा की तकरीबात मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ जारी हैं और खेलों में भारत के मर्दों की टेबल टेनिस टीम ने आस्ताना में एशियन चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल किया है और राफेल नडाल ने टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत की मशरकी मुल्कों से राब्ते बढ़ाने की पॉलिसी ने जुनूब मशरकी एशियाई मुल्कों की तंजीम आसियान के साथ ताल्लुकात को नई तवानाई रफ्तार और नई समत फराहम की है। आज लाओ पीटीआर के शहर वियंतियान में भारत आसियान सरबराह कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने जोर दिया कि 21वीं सदी भारत और आसियान मुल्कों की सदी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और आसियान ममालिक अमन पसंद ममालिक हैं और वो एक दूसरे की कौमी सालमियत और इक्तदार आला का एहतराम करते हैं।
हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है।
भारत और आसियान मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आसियान खित्ते के साथ तिजारत पिछले 10 वर्षों में तकरीबन दोगुनी हो गई है और ये 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा की है। उन्होंने कहा कि भारत 7 आसियान मुल्कों के साथ बराह रास्त परवाज की सहूलत से जुड़ा हुआ है और जल्द ही ब्रुनेई के साथ बराह रास्त परवाजें शुरू होंगी।
तिमोर लेस्ते में हमने नया दूतावास खोला है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब ये सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है।
इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने भारत और आसियान मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए 10 निकाती मंसूबे का भी ऐलान किया। आइंदा साल सियाहत के लिए आसियान भारत साल के तौर पर मनाया जाएगा, जिसके लिए भारत मुश्तरका कार्रवाईयों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर फराहम करेगा। भारत और जुनूब मशरकी एशियाई मुल्कों की तंजीम आसियान ने तालीम, हिफ्जान सेहत, ज़राअत और आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक एक्शन समेत मुख्तलिफ शोबों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा उठाने में तालमेल पर जोर दिया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर एक मुश्तरका बयान में भारत और आसियान ने खित्ते में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देने के लिए मालूमात, तजुर्बात और बेहतर तौर तरीकों के तबादले के लिए तालमेल के मौके का एतराफ किया। उन्होंने बाहमी इक्तसादी शराकतदारी के लिए मालियाती टेक्नोलॉजी और इख्तरा को एक अहम मुहर्रिक के तौर पर तस्लीम किया। भारत और आसियान ने इस बात का भी एतराफ किया है कि साइबर सिक्योरिटी में आपसी तआवुन जामे कलीदी शराकतदारी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने मस्नूई जिहानत से मुतालिक टेक्नोलॉजी से मौसर तौर पर और जिम्मेदारी के साथ फायदा उठाने के लिए जरूरी मालूमात, हुनरमंदी, बुनियादी ढांचे, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और पॉलिसियों के फरोग में आपसी तालमेल की भी हिमायत की। भारत और आसियान ने इस बात का भी एतराफ किया कि मस्नूई जिहानत तेजी के साथ नौकरी के मंजरनामे को तब्दील कर रही है और अफरादी कुव्वत की महारत को बेहतर करने और उन्हें फिर से माहिर बनाने की जरूरत है। इस दौरान लाओस में मशरकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसियान के रहनुमाओं के साथ सिलसिलेवार बाहमी मीटिंगें की। जनाब मोदी ने जापान के नए वज़ीर-ए-आज़म शिगेरो इशिबा के साथ दोतरफा मीटिंग की। میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں اشتراک میں اضافے کے ذریعے بھارت جاپان خصوصی کلیدی اور عالمی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا ارادہ کیا. ان میں تجارت و سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے کا فروغ، دفاع اور سلامتی، سیمی کنڈکٹر، ثقافت اور عوام سے عوام کے درمیان تبادلے شامل ہیں. دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت اور جاپان ایک پرامن، محفوظ اور خوشحال بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے قریبی شراکت دار ہیں اور انہوں نے اس مقصد کے حصول کی خاطر مل کر کام کرنے کے اپنے عہد کو دہرایا. جناب مودی نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت جاپان کے ساتھ اپنے رشتوں کو اولین ترجیح دینا جاری رکھے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کے ساتھ ایک دو طرفہ میٹنگ بھی کی. یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات تھی. دونوں وزرائے اعظم نے تجارت و سرمایہ کاری، دفاع و سلامتی، قابل تجدید توانائی، تعلیم، زرعی ٹیکنالوجی، کھیل، سیاحت، خلا اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت باہمی تعاون کے مختلف شعبوں کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اعلی سطح کے مسلسل رابطوں سے دو طرفہ تعلقات میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے. مرکز نے حزب التحریر اور اس سے وابستہ سبھی تنظیموں کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون کے تحت دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے. ایک گزٹ نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت داخلہ نے کہا کہ حزب التحریر مبینہ طور پر لوگوں کو شدت پسند بنانے، سیدھے سادے نوجوانوں کو آئی ایس آئی ایس جیسی تنظیموں میں شامل ہونے کی تحریک دینے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے رقومات اکٹھا کرنے کے معاملات میں ملوث ہے. وزارت نے کہا کہ حزب التحریر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارموں کے ذریعے دہشت گردی کو بھی شہ دے رہی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سرکردہ صنعتکار اور انسان دوست شخصیت رتن ٹاٹا کی آخری رسومات آج پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ممبئی میں ادا کر دی گئیں. رتن ٹاٹا کا کل ممبئی کے ایک اسپتال میں 86 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے اپنی انتھک محنت سے ٹاٹا گروپ کو عالمی سطح پر ایک منفرد پہچان دلائی. مزید تفصیل ہمارے نامہ‌نگار سے.
بین الاقوامی سطح پر مقبول بھارت کے کاروباری رہنماؤں میں سے ایک رتن ٹاٹا کی آخری رسومات آج شام ورلی کے شمشان میں پارسی رسم و رواج کے مطابق ادا کی گئیں. زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد اس میں شامل ہوئے. مرکزی وزیر امت شاہ اور پیوش گوئل، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے، نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس، گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل سمیت دیگر معزز شخصیات نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی. مہاراشٹر حکومت نے رتن ٹاٹا کے انتقال پر آج ایک دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا تھا. مہاراشٹر کی کابینہ نے آج ایک تجویز منظور کی ہے جس میں مرکزی حکومت سے رتن ٹاٹا کو بھارت رتن سے سرفراز کیے جانے کی درخواست کی گئی ہے. ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید.
جنوبی کوریا کی مصنفہ ہاکانگ کو ادب میں سال 2024 کے نوبیل انعام سے سرفراز کیا گیا ہے. انہیں ان کی پر اثر شیری نثر کے لیے اس اعزاز سے نوازا گیا جن میں تاریخی صدمات اور انسانی زندگی کی نازک صورتحال کا اظہار کیا گیا ہے. سائنس سے متعلق رائل سویڈش اکیڈمی کی نوبیل کمیٹی نے آج انہیں اس اعزاز سے نوازے جانے کا اعلان کیا. محترمہ ہاکانگ اپنے ناول دی ویجیٹیرین کے لیے زیادہ مقبول ہیں جسے 3 حصوں میں لکھا گیا ہے. نوبیل کمیٹی کے مطابق یہ ایوارڈ جیتنے والی جنوبی کوریا کی وہ پہلی مصنفہ ہیں. محترمہ کانگ نے 1993 میں میگزین لٹریچر اینڈ سوسائٹی میں شائع ہوئی اپنی نظموں کے ساتھ اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا تھا. اقلیتی امور، ماہی گیری، مویشی پروری اور ڈیری کے مرکزی وزیر مملکت جارج کورین نے آج صبح کوچین بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اینیمل کوارنٹائن اینڈ سرٹیفیکیشن سروسز کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ سماج اور جانوروں دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اسے تمام زندہ رہنے والی چیزوں سے پیار کرنے کے ملک کی روایت کو برقرار رکھنے کا ایک اقدام قرار دیا. اس کے ساتھ ہی کوچی ایئرپورٹ ملک کے نئی دلی، ممبئی، کولکتہ، چنئی، بنگلورو اور حیدرآباد ایئرپورٹس میں شامل ہو گیا ہے جہاں پالتو جانوروں کے لیے ایسی سہولیات موجود ہیں. ملک بھر میں درگا پوجا کی تقریبات کا سلسلہ پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے. اڈیشہ میں مشہور درگا پوجا کا آج روایتی رسم و رواج اور جوش و خروش کے ساتھ آغاز ہوا جسے दुर्गोत्सव या शरदोत्सव के तौर पर भी जाना जाता है। अकीदतमंदों ने रियासत भर के मुख्तलिफ शक्ति पीठ और पूजा पंडाल में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की। बदी पर नेकी की फतह का ये त्यौहार इस माह की 13 तारीख तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग तकरीबात में शामिल हो रहे हैं। इस साल भुवनेश्वर और कटक दोनों शहरों में 300 से ज्यादा दशहरे के पंडाल बनाए गए हैं। गुजरात में भी महाअष्टमी का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बनासकांठा के सबसे मकबूल अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली माता मंदिर समेत रियासत के सभी शक्ति पीठों में आज बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए। इस दौरान महाअष्टमी के दिन रियासत में गरबा और डांडिया की भी धूम है। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
नवरात्रि का यह त्यौहार वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, पर गुजरात में नवरात्रि का यह पर्व कुछ खास है। पूरे दिन धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ गुजरात के लोग रात में माँ अम्बा की सामूहिक आरती उतारकर और अपना लोक नृत्य गरबा पेश करके इस त्यौहार को जश्न के साथ मनाते हैं। बारिश की संभावना के बावजूद आज पूरे राज्य में सभी छोटे बड़े शहरों में सार्वजनिक गरबा महोत्सव में गरबे की धूम मची है। नवरात्रि की रात में हर तरफ जगमगाती रोशनी, चनिया चोली और केड़ियों जैसे आकर्षक पारंपरिक परिधान और विभिन्न आभूषण पहने हुए लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो इस त्योहार को और खास बनाते हैं। बेताली, तीन ताली, हींच, टिमरी जैसे परंपरागत गरबे आज भी सबकी पसंद है। इस वर्ष मनोरंजन के साथ साथ लोग गरबे के माध्यम से सामाजिक संदेश भी दे रहे हैं। गुजरात में नवरात्रि का ये उत्सव सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि राज्य की सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है।
आकाशवाणी न्यूज अहमदाबाद।
भारत के महकमे मौसमियात IMD ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने इस हफ्ते के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कायकल, साहली कर्नाटक और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाके में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाकी हिस्सों और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून के खत्म होने के लिए हालात साजगार हैं। भारत के मर्दों की टेबल टेनिस टीम ने कजाखिस्तान के शहर आस्ताना में आज सेमीफाइनल में चीनी ताइपी से 0-3 से हारकर एशियन चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल किया। शरत कमल इफ्तिताही मैच में लिन युनजो से हार गए। सिंगल्स के दूसरे मैच में मानव ठक्कर ने बेहतर खेल का मुजाहरा करने के बावजूद काओ चेंगजू से 1-3 से हार गए। भारतीय मर्दों की टीम ने 2021 और 2023 में भी कांसे का तमगा हासिल किया था। स्पेन के मारूफ टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने आज टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। उन्होंने 22 मरतबा ग्रैंड स्लैम का खिताब हासिल किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए उन्होंने अपने करियर में तावन मिलने पर शुक्रिया का इजहार किया। नडाल नवंबर में मालागा में डेविस कप के फाइनल में अपना आखिरी टूर्नामेंट खेलेंगे। नडाल ने मजमुई तौर पर 92 ATP सिंगल्स का खिताब हासिल किया, जिनमें 36 मास्टर्स खिताब और एक ओलंपिक गोल्ड मेडल शामिल है। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन आज आर्कटिक ओपन 300 के दूसरे मरहले में चीनी ताइपे के चाओ टियन चेन से हार गए। मैच में बेहतर शुरुआत करने के बावजूद आलमी नंबर 19 भारतीय खिलाड़ी 21-19, 18-21, 15-21 से हार गए। इसके साथ ही सिंगल्स मुकाबले में भारत की मुहिम खत्म हो गई। खवातीन के सिंगल्स में उन्नति हुड्डा को भी कनाडा की खिलाड़ी मिशेल ली के खिलाफ 10-21, 19-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मालविका बंसोड़ भी थाईलैंड की खिलाड़ी रचनो कैंतानो से 15-21, 8-21 से हार गईं। खवातीन के सिंगल्स में दोनों ही भारतीय खिलाड़ियों ने काबिले तारीफ कोशिशें की, लेकिन उनकी मुहिम खत्म हो गई। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत की मशरिकी मुल्कों से राब्ते बढ़ाने की पॉलिसी ने आसियान के साथ ताल्लुकात को नई तवानाई रफ्तार और नई सिमत फराहम की है। उन्होंने लाओ PDR के शहर वियंतियान में आसियान लीडरों के साथ बाहमी मीटिंगें भी की। मरकज ने गैर कानूनी कार्रवाईयों की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत हिजबुत तहरीर और उसकी जैली तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमें करार दिया है। मारूफ सनतकार रतन टाटा की आखिरी रसूमात मुंबई के वर्ली शमशान में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गयी। जुनूबी कोरिया के मुसन्निफा हांगकांग को अदब का नोबेल इनाम दिया गया। दुर्गा पूजा की तकरीबात मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ जारी हैं। और खेलों में भारत के मर्दों की टेबल टेनिस टीम ने आस्ताना में एशियन चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल किया और राफेल नडाल ने टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।